نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قرآنی صورتوں کا نظم جلی اس میں سے ہم سورة البقرہ کے بارے میں باتیں جان رہے ہیں اس سے پچھلی نشست میں ہم نے فلو چارٹس کے ذریعے سے پوری سورة بقرہ کے چار حصوں کی ڈیٹیلز پڑھی تھی ایسے ہی صحیح کہہ رہی ہوں چار حصوں میں سے چار ٹاپک نکلے تھے آخری حصے کا ٹاپک کیا تھا کہ شریعت محمدی پر ایمان لاؤ عمل کرو اور اپنی طاقت کے مطابق چلتے جاؤ آج اب ہم پڑھیں گے سورة البقرہ کے تمہیدی حصے کا نظم جلی یعنی دوسرے لفظوں میں آسان سی بات کہہ دوں کہ ابھی تک جو بات فلو چارٹس یا نقشوں کی روشنی میں دیکھی ہے اب ہم اس کو انشاءاللہ تعالی کچھ جملوں اور مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے آپ کہیں گے بار بار ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کیا فائدہ ہے تو فائدہ یہ ہے کہ پریکٹس میکس امین پرفیکٹ جس چیز سے محبت ہوتی ہے یا جس سے محبت کرنی ہوتی ہے انسان اس میں گہری دلچسپی رکھتا ہے محبت کا اظہار کرتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی صورتوں کو اس انداز سے پڑھنے سے ہمیں ان کی محبت بھی عطا کرے اور ہم سے راضی ہو جائیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورة البقرہ کے تمہیدی حصے کا نظم جلی یعنی آیت 1 سے 39 وہی جو فلو چارٹ تھے اس میں سے پہلے فلو چارٹ کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا صرف اب ہم سینٹنسز کی صورت میں پڑھ رہے ہیں پہلے ہم نے پکچرز کی صورت میں دیکھا تھا اس لیے میں اس کو گو تھرو کروں گی اس میں کوئی نئی چیز نہیں آئے گی سورة البقرہ کے پہلے تمہیدی حصے کا نظم جلی 6 پیراگرافوں پر مشتمل ہے سب سے پہلے انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئیں مومنین کافرین اور منافقین سب سے پہلے 3 انسانوں کی قسمیں ہم نے کہاں پڑھی تھی آیت نمبر 1 سے 20 تک بس یہ کہنا چاہ رہی تھی پہلا گروہ جنتی اور دیگر 2 گروہ دوزخی ہوں گے پہلے گروہ کو قرآن نے کیا کہا جلدی سے بولیے اب میں آپ سے سنوں گی کیونکہ یہ پڑھا دیا ہدلل تو پہلا گروہ کیا ہے متقیوں کا کیا ہے اس کے لیے اللہ کا فیصلہ جنتی دیگر 2 گروہ دوزخی ہوں گے دوسرے گروہ کا کیا نام ہے تیسرے کا نام تو منافق نہیں آیا لیکن نفاق کی علامتوں کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے پیراگراف یعنی آیت 1 سے 5 میں مومنین کی 5 صفات بیان کی گئیں ایمان بالغیب کیا ہوتی ہے 5 صفات اب تو یاد ہو جائیں گی نا یہ چیزیں بار بار پڑھ کے ایمان بالغیب نماز انفاق قرآن اور سابقہ کتب اور آخرت پر ایمان دوسرے پیراگراف یعنی آیت 6 سے 7 میں کافرین کی صفات بیان کی گئیں کیا ہیں ان کی صفات نمبر 1 وہ ضدی ہیں یہ نوٹ کیجئے گا سٹبن ہوتے ہیں ہٹ دھرمی ہوتی ہے نا پھر ہی بندہ کافر بنتا ہے جس کافر کے دل میں یاد رکھیے گا ضد نہیں ہے نا اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا پچھلے دنوں میں نے اپنے ایک ٹریول کے ایکسپیرینس بتائے تھے ایک سیم ٹریول میں مجھے 2 طرح کی سسٹر سے بات کا موقع ملا پہلی بچی جو تھی وہ ینگ تھی سننے کو تیار تھی اور بہت زیادہ اس نے میری بات کو سنا اور اس میں انٹرسٹ بھی لیا اور اپنی بھی ویوز دیے لیکن اس کے بعد جن سسٹر سے بات ہوئی وہ بزرگ خاتون تھی تو وہ اپنی اس بات پہ ضد میں تھی کہ دیر از نو گاڈ تو یاد رکھیے ختم اللہ علی قلوبہم کی سزا ان کو ملتی ہے جو ضدی ہوتے ہیں آپ کے میرے ارد گرد باہر پھرنے والے سارے کافر اب جہنمی ہم فتوے دے دیں نہیں دے سکتے کیونکہ جب تک حجت تمام نہیں ہوتی آپ اور میں نہیں جانتے کہ یہ باہر والے کافر ہیں یا نان مسلم ہیں یاد کیجئے روح القرآن تفسیر کے شروع میں ان آیتوں پہ ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی کافر اور لفظ ہوتا ہے غیر مسلم اور ہوتا ہے غیر مسلم ہر وہ بندہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا پر کافر وہ ہے جس تک حق پہنچایا جائے پھر بھی وہ انکار کر دے تو ہم نے تو ابھی سب کو بچایا بھی نہیں ہے ہم کسی کو فتویٰ کیوں دیں ہاں یہ دعا کیجئے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں ٹھیک ہے ان کا حال کیا ہے جو ضدی ہیں ان پر تبلیغ کرنا یا نہ کرنا برابر ہے میرا دل کرتا ہے میں اردو کا جملہ بولوں اور آپ کو عربی میں یاد آ جائے سواؤن علیہ مانزرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون دعوت کا انکار کرنے والوں پر مہر لگا دی گئی کیا ختم اللہ علی قلوبہم تیسرے پیراگراف یعنی آیت 8 سے 20 8-20 میں منافقین کی صفات بیان کی گئیں اور 2 تمثیلات سے ان کی وضاحت کی گئی کیا تھی علامت منافقین کی یاد ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یشعرون جھوٹ بولتے ہیں اور ایمان والوں کو بیوقوف کہتے ہیں انومنو کما من السفہا دوغلے ہوتے ہیں، وَإِذَا لَكُلْ لَّذِينَ آمَنُوا، یاد آ گیا؟ مثالیں کون سی تھی دو، بتائیے جلدی سے. پہلی تمثیل کیا تھی؟ او کمثل الذی استوقد نارا، کون سی ضد تھی؟ کہ آگ جل رہی ہے لیکن کچھ لوگوں نے آنکھیں بند کر لی. اور دوسری ضد کون سی تھی؟ آسمان سے زور کی بجلی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اپنے ذہن کو ساتھ ساتھ چلایا کرے اور اس کے نیچے ہلکا سا یہ لفظ لکھ لیں. جیسے اوپر پڑھا آپ نے کہ ان پہ تبلیغ کرنا برابر ہے نہیں، تو آپ جلدی سے لکھ لیں چھوٹا سا سباؤن رحیم، باقی بات آپ کو خود ہی یاد آ جائے گی. مہر لگا دی، فوراً لکھ لیجئے ختم اللہ علی قلوبہم. اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ علم میں پختگی ہوتی ہے، دن بدن آپ اپنی سکلز کو شارپ کریں. بیٹھ کے سننے سے بات نہیں بنتی، آپ سننے کے دوران اس سے آگے سوچ رہے ہوں، پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 سے 29، 21 سے 29 تھی، کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سے. تمام دنیا کے انسانوں کو عبدو کے الفاظ سے اپنے خالق اور اپنے رب کی عبادت کی دعوت دی گئی تاکہ وہ انسانوں کے پہلے گروہ میں شامل ہو سکیں. بات سمجھ آ گئی؟ پہلا گروہ کون تھا؟ ھدی للمتقین. بالکل. پانچویں پیراگراف یعنی آیت 30 سے 37 میں آدم کی خلافت اور ان کا استحقاق ثابت کیا گیا، یعنی حق کو طلب کرنا. آدم نے اپنا سبق یاد رکھا اور تمام نام بتا دیے. آدم اور ابن آدم کی کشمکش قیامت تک متکبر و مغرور شیطان یعنی ابلیس سے جاری رہے گی. ابلیس جنات میں سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے غلطی مان کر توبہ کی، لیکن ابلیس نے اپنی غلطی ماننے سے انکار کیا. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، ابلیسی رویہ کے غلطی کرو اور ڈٹ جاؤ، اور آدم کا رویہ کے آدمی سے کیا مطلوب ہے؟ کہ غلطی ہو تو توبہ کر لیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا. پھر چھٹا پیراگراف تھا 38 سے 39 کا، اس میں واضح کیا گیا کہ قیامت تک رسولوں کے ذریعے ہدایت کا انتظام کر دیا گیا. آیت کیا تھی؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو شخص بھی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ جنتی ہے، اس کو خوف و حزن لاحق نہ ہوگا. جو شخص بھی اسلام کی دعوت کا انکار کرے گا وہ دوزخی ہوگا. اس تمہیدی حصے میں یہودیوں کو یہ اصول بتایا گیا کہ جنت میں داخلہ نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ ہدایت کی پیروی پہ ہوگا. یہود کو کیا خوش فہمی تھی؟ لن یدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا. دونوں گروہوں کی یہی خوش فہمی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا. بات واضح. اب اس پہلے حصے کا جو تمہیدی حصہ تھا، کہہ لیجئے سورۃ بقرہ کا، اس کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ تو ہم نے دیکھا تھا توحید اور منصب خلافت کے سلسلے میں تین مختلف گروہ یعنی مومنین، منافقین اور کافرین کے ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ منصب خلافت کو سمجھ کر ابلیس کے شر سے بچتے ہوئے توحید اختیار کر کے مومنین کے گروہ میں شامل ہو جائے اور جنت حاصل کرے. کیا مطلب؟ سمپل سی بات ہے، یہ سارا جو بھی پڑھا نا اس کو ایک جملے میں سمیٹو. سورۃ بقرہ کی پہلی یعنی 1 سے 39 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اعتبار سے تین گروہ ہیں، متقی، کافر اور منافق. متقی کا انجام جنت ہے، کافر اور منافق کا انجام ایک اوور آل رول پہ دیکھا جائے تو جہنم ہے. ٹھیک ہے، پھر انسانیت کو دعوت تھی ایک رب کو مان لو، اور اس کے بعد خلافت ارضی، اور اس کے آخر میں بتا دیا کہ نسب پر جنت نہیں ملنی. آج ہمیں بھی محمدی ہونے پہ جنت نہیں ملنی. آج امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کی بنیاد پہ کوئی نہیں جنت میں جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ اس سے راستہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم چلیں گے دوسرا حصہ 40 سے 142. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورۃ بقرہ کو جب سے ہم نے شروع کیا یہ تیسرا مقام ہے کہ ہم ان آیات کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کے اندر پختگی آنی چاہیے نا. تو اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ دوسرا حصہ، اس میں پھر 6 ٹاپک ہیں. کیا؟ پہلے پیراگراف آیت 40 سے 46 میں بنی اسرائیل بالخصوص یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ. اب آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے اس آیت میں کس کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی؟ آپ بتائیں گے مدینہ کے یہود کو اور قیامت تک آنے والے غیر مسلموں کو. دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے اپنی ذات پر غور کرنے کا مطالبہ کیا گیا آیت 44 میں. کیا تھا؟ آیت یاد آ رہی ہے؟ علماء یہود پر ایک تنقید تھی. جی آپ بولیے. جی تامرون بل आखिर में क्या आता है उसके, वतन सोन अनफुसकुम अफलात आकिलून अतामुरून नास बिल बिर्री वतन सोन अनफुसकुम, दूसरों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद भूल जाते हो। बिल्कुल वही बात है इसमें। फिर इसके साथ साथ मुलाकातें रब पर यकीन के साथ जिहाद सब्र और नमाज यानी सलात से मदद लेने का हुक्म दिया गया। आयत 45 में क्या थी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, नमाज और सब्र की बात है। फिर दूसरे पैराग्राफ यानी 47 से 48 में बनी इसराइल को क़्यामत के अज़ाब से डराया गया। वही आयत याद कर लीजिए, वत्तकु यौमन ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वाली आयत है, इस दिन कोई नफ्स काम ना आएगा। तीसरा पैराग्राफ आयत 49 से 79 है, इसमें बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के एहसानात का तस्करा किया गया और फिर इनकी नाफरमानी और जरायम से आगाह किया गया। आप देखिए कि तकरीबन 40 आयतें हैं इस हिस्से में, जिसमें बनी इसराइल की खड़मस्तियाँ, उनकी नाफरमानियाँ, असाब सफ्त के किस्से और इसी तरह से गाय के वाक़यात और बंदर जो बनाए गए, सब कुछ इसमें आता है। तो ये उनकी जरायम की लिस्ट इधर बयान की गई। अल्लाह ताला ने फिरौन के मजालिम से निजात दी, तौरात से नवाजा, मनोसलवा नाजिल किया, बादलों का साया किया, 12 चश्मे जारी किए वगैरह। लेकिन बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी, अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा किया, आयात इलाही का इनकार किया, अम्बिया को कत्ल किया, सब्त के कानून की खिलाफ वर्जी की, गाय को ज़िबा करने में जी ये क्या लफ्ज़ होगा बोलिए, लईता व लाल, हम लीतो लाल कहते हैं ना, लईता क्या है, या लईता, यानी इसका मुराद यही होता है कि मैं ये काम करना नहीं चाहता, यानी जिसको आप कहते हैं बहाने बनाना, किसी काम का करने से इनकार कर देना, यानी गाय को ज़िबा करने के हुक्म में पसो पेश की कि हमें नहीं करना। तहरीफ आयात से काम लिया, दुनियावी फ़ायदों के लिए आयात घड़कर अल्लाह से मंसूब की वगैरह, ये इन लोगों का जुर्म था। चौथे पैराग्राफ यानी आयत 80 से 89 में बनी इसराइल को इनके नस्ली तासुब और तफाखुर पर मलामत की गई। वो समझते हैं कि वो दोजख में सिर्फ चंद दिन ही के लिए जाएंगे, जन्नत इनका नस्ली इस्तेहकाक है। क्या कहते थे, लन तमसनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। आयत 83 में 10 नुकाती मीसाक के बनी इसराइल वैज़खस नमीसाक बनी इसराइल का जिक्र हुआ, जिनकी दिफात चाहिए थी। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, आज यहूद भी कहते हैं 10 कमांडमेंट्स, ठीक है। वो उसमें सबसे पहली चीज़ों में क्या चीज़ थी, तौहीद, उबुदु रब्बकुम, फिर वबिल वालिदैनी एहसाना, फिर अकरबा और यतामा और मसाकीन से हुस्न सलूक है, हुस्न कलाम, इकामत नमाज, ईताए ज़कात, कत्ल नफ्स इज्तनाब और जिला वतनी की ममानियत। आयत 84 से 89 में बनी इसराइल के इस्म और उद्वान, किसको कहते हैं इस्म और उद्वान, गुनाह और ज्यादती का जिक्र किया गया। वो अल्लाह के हकूक भी पूरे नहीं करते और बंदों के हकूक भी। वो लोगों को पहले जिला वतन करते, फिर फिदिया लेकर दोबारा शहरियत अता करते। वो एक जुज़वी पैरवी की बात है, बनी इसराइल की जुज़वी पैरवी यानी पार्शल सबमिशन। अफतुमेनून अबिबादिल किताबी व तकफुरून अबिबाद की सजा बताई गई कि इस जुर्म के मुर्तकिब अफराद को दुनिया में रुसवाई और आखरत में आग की सजा दी जाएगी। पांचवें पैराग्राफ यानी आयत 90 से 123, 90 से 123 में बनी इसराइल के नस्ली तासुब। नस्ली तासुब क्या होता है, हम सबसे अच्छे हैं, हमारी जात, हमारी बिरादरी सबसे अच्छी है, और बगी का जिक्र किया गया जिसके सबब वो कुरान का इनकार कर रहे हैं। बनी इसराइल के कुफर की वजह बगी और इनका नस्ली तासुब है। ऐ यकफुरू बिमा अनज़लल्लाहु बगयन, वो लोगों पर दस्त दराजी करके इनका इस्तेहसाल करना चाहते थे। आयत 90 में वो कहते थे कि हम अपने ख़ानदान के रसूलों पर नाजिल करदा वही पर ईमान लाएंगे और ख़ानदान से बाहर यानी बनी इस्माईल के नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा वही पर ईमान नहीं लाएंगे। क्या कहा था उन्होंने, नोमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफुरून बिमा वराअहू। आयत 91 है, याद आ रही है ना सब बातें, कोई नई बात नहीं है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। आयत 92 से 105 में बनी इसराइल के जरायम गिनवाए गए, बछड़े को खुदा बना लिया, अहद करने के बाद समेना व असैना कहा, यानी सुनेंगे तो सही लेकिन मानेंगे नहीं, दुनियावी जिंदगी के हरीस बने। क्या आयत आई थी, अहरसन नासी अला हयातिन, हजरत जिब्राइल से दुश्मनी कर ली। क्या कहते थे जिब्राइल, ओह वो तो हमारे दुश्मन है। फिर अहदो मीसाक के बाद इसे उठाकर फेंक दिया, हारूत और मारूत से जादू सीखकर खानदानी निज़ाम को तबाह किया वगैरह। देखिए कितना बेहतरीन खुलासा है। अब आपको ये सब चीज़ें ढूंढनी बहुत आसान हो सकती है, आप इस बुक में से भी देख सकते हैं। आयत 106 से 109 में बनी इसराइल के हसद का पोल खोला गया, हसदम मिनैन दिया अनफुसिहिम, हसद की वजह से वो मुसलमानों को ईमान लाने के बाद दोबारा काफिर देखना चाहते हैं। और आयत 110 से 115 में बनी इसराइल की नस्ल परस्ती और खुशफहमियों का जिक्र किया गया, वो यहूदियों और ईसाइयों ही को जन्नती समझते हैं। हम क्या समझते हैं आज, बस मुसलमान जन्नती हैं? नाम से सिर्फ नहीं होंगे, काम से होंगे। जबकि हर शख्स जन्नत में दाखिल हो सकता है बशर्ते ये कि वो ईमान लाकर अमल सालेह करे। लई यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन औ नसारा। आयत 116 से 123 116-123 में साफ साफ बताया गया कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं, वो कुन फयकुनी, इसको लिख लें आप, पता नहीं इसका कुछ और ही ना बना दें, फकुनी और कुन और कन है। कुन फयकुन क्या होता है? कहा और हो गया। कुन फयकुनी इख्तियारात का मालिक है। मुसलमानों को खबरदार किया गया कि यहूदी और ईसाई मुसलमानों से हरगिज राजी ना होंगे जब तक इनकी पैरवी ना करें। आखिर में यहूद और नसारा को क्यामत के अजाब से डराया गया। आयत 47, आयत 122 यानी 122 में, आयत 47 यानी 47 का एयादा यानी दोहराई है करके क्यामत के अजाब से डराएगा, यानी एक ही बात दो दफा कही गई। वाकई अल्लाह ताला कुन फयकुन का मालिक है। याद रात को बर्फ कैसे आई? अल्लाह के कुन से आई है। सोच सकते थे आप दो दिन पहले कितनी बर्फ होगी? हम अपनी मारते हैं ना, अल्लाह अपनी मनवाता है। तो इसलिए मान लीजिए कि वो एक सेकंड में हालात बदल सकते हैं। यदि मैं तो ये सोचती हूँ कि किसी से मायूस तो होने की ज़रूरत ही नहीं, ये नहीं हो सकता, ये दीन पे नहीं आएगा, इनकी सुलह नहीं होगी, ये घर नहीं बसेगा, कभी नहीं कह सकते। जब दुआ करनी हो ये कहें कि साहिब कुन मेरी इस दुआ पे कुन कह दे, अल्लाह ताला अगर खैर रखेगा तो चाहेगा तो कर देगा इंशाल्लाह। बहरहाल फिर आप देखिए छठा और आखिरी पैराग्राफ इस हिस्से का 124 से 141 यानी पहले पारे के एंड तक है। इसमें बनी इसराइल को अपने जद्द अमजद हजरत इब्राहिम और आबा इस्माइल और इसहाक का रास्ता अख्तियार करने की दावत दी गई। किस बात का गम था हजरत इसहाक को, हजरत याकूब को, कि माताबुदूना मिम बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। इन्हें बताया गया कि खुद हजरत इब्राहिम को सबका इमाम बनाया गया था, इन्नी जाइलुकल लिन्नास इमामा, लेकिन इनसे भी साफ साफ कह दिया गया था ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये कि ये इमामत ईमान और अमल से मशरूत है, आपकी नस्ल के ज़ालिमीन और मुशरिकीन पर इसका इत्तलाक नहीं होगा। हजरत याकूब ने भी मरने से पहले अपने तमाम बेटों से एक खुदा की परस्तिश का अहद ले लिया था। इस हजरा याकूब अल मौत, क्या तुम देख रहे थे कि जब याकूब को मौत आई तो यही पूछा था ना, तो मा ताबुदूना मिम बादी, आयत 133 है ये। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि आपकी बेसत दुआ इब्राहिमी ही की कबूलियत का नतीजा है, अहले किताब को दीन इब्राहिमी का इत्तबा करने का हुक्म दिया गया है। बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा 135, अहले किताब को रसूलों में तफरीक ना करने और बनी इसराइल और बनी इस्माइल में उठाए जाने वाले आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत दी गई है, और यहूदियत और ईसाइयत को छोड़कर अल्लाह का रंग यानी सिबगतल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा इख्तियार करने की हिदायत की गई, आयत 138 में। यहाँ तक अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि सूरत अल बकरा का वो हिस्सा पूरा हुआ जो उम्मत बनी इसराइल से मुतल्लिक था, आपको सारे जुमले इस वक्त याद आने चाहिए जो हमने उस वक्त देखा था कि सूरत बकरा दो उम्मतों की सूरत है, उम्मतैन। पहला पारा, जहाँ तक अभी हम कर चुके हैं, पहला पारा यहूद, उनकी हिस्ट्री, उनकी शरारतें, उनकी खुशफहमियों पर मबनी था, यानी इस दूसरे हिस्से में दावत क्या दी गई थी बनी इसराइल को कि आखिरी रसूल की शरीयत पर ईमान लाओ, और इन्हें इमामत के मनसब से माजूली के असबाब तफसीली तौर पर बता दिए गए। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, सादे नए कुरान दौरा कुरान के लिए आप खोल रहे हैं, आप में से कोई इन सारी बातों को जो अभी तक हमने आयतों की पढ़ी है, अपने उन कुरान पे लिख सकता है, समझे? इस किताब की या इस टॉपिक की बातों को आप अपने कुरान पे लिख लें, उसका जो साइड के बॉर्डर्स होते हैं ना, अगर आप ये सारा उस पे लिख गए, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, जुबानी याद होता है। और मैंने इस चीज़ को कब आजमाया था, जब मैंने खुलासे कुरान किया था, और आप देखते हैं कि खुलासे कुरान के सिर्फ मेरे सामने ये सादा यही कुरान होता है जिसमें तर्जमा होता है, सिर्फ बिल्कुल सादा कुरान। क्यों मुझे ये चीज़ें उस वक्त बोल के याद रही, क्योंकि देखने का वक्त ही नहीं होता, अपने 20 मिनट में ग्रुप कराना है, किधर देखेंगे आप? तेज़ गाड़ी चला रहे हैं तो आप इधर की सड़कों के किनारों पे चीज़ें तो नहीं देखेंगे ना। ये एक प्रैक्टिसेस फिर आपको इस काम के लिए तैयार करती हैं। पिछले साल तरतीलुल कुरान हुआ, तरावी के बाद 15 मिनट का एक वक्त लेकर मैंने शुरू किया, फिर अल्लाह ने वो सिलसिला बढ़ाया, पूरा कुरान रिकॉर्ड किया। बाद में जब हमारी एक स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में करती हैं ऑडियोज़ को सुनकर, तो पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पहले लिखती हैं फिर सुनती हैं, तो कहती थी कि आई एम अमेज्ड बाय तरतीलुल कुरान। मुझसे पूछ रही थी, ये बताएं कि आपने एक पूरे पारे को 15 मिनट में कैसे कर लिया? तो मैंने कहा मैं 5 मिनट में भी कर सकती हूँ अल्लाह के हुक्म से, पर ये कब होता है? जब यहाँ हो, नोट्स खोलो, फ्रोलो थ्रोलो, इधर ढूंढो, गलत मलत बता के आ जाओ। याद रखिए, इल्म को हजम करना पड़ता है। किसी को सुन के, ये बातें सुन के भी कोई आगे प्रेजेंट कर सकता है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आपने खुद को उसका यकीन नहीं दिलाया ना, तो वो बस ऐसे ही नाउजविला खाया और उल्टी कर दी। आप देखिए, एक फूड है जो डाइजेस्ट होता है ना, वो बॉडी को एनर्जी देता है, जिस्म से गंदगी बन के निकलेगा, एनर्जी बॉडी को देगा। दूसरा फूड आप खाते हैं और थ्रो अप कर देते हैं, फर्क क्या है? खाया और फेंक दिया, यानी उसकी खैर नहीं ली। दूसरों से सुन सुना के नोट्स लेकर भी लोग पढ़ा सकते हैं, पर वो तासीर नहीं हो सकती जो वो चीज़ आपके अंदर से उतरे। मैं ऐसी बीसियों मिसालें जानती हूँ, पढ़ाने वालों का शरह सदर नहीं होता, वो नोट्स गुम गए। कई लोग पूरा वक्त नोट्स ही ढूंढ रहे होते हैं, लिख के लाई थी किधर गया, कभी दूसरा सफ़ा तीसरे की जगह पढ़ देते हैं, फिर कहते हो हो सफ़ा दूसरा था। मैंने खुद देखा है, वल्लाह मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाती, कोशिशें अल्लाह कबूल करे, लेकिन लोग इतना तरद्दत कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि ये कहें कि हम पढ़ा रहे हैं। कोई कहे अच्छा पढ़ा हुआ है उसको सुना दो, तुम्हारा अजर तो उतना ही है, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ पेश करोगे। इसके लिए लोग कहते हैं नहीं, फिर वो सुनते नहीं है ना लोग रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग वो ही नहीं सुनते जिन्होंने सुनवानी नहीं होती। नबी सल्लम का तो एक लफ्ज़ हमारे पास बोल के नहीं आया, हम तो उनकी रिकॉर्डिंग ही सुन रहे हैं, उनके बोले हुए लफ्ज़ आ रहे हैं, वो मौजूद है आपके मेरे बीच में। तो हम कल कह दें हदीस लेनी नहीं है हमने, क्योंकि नबी खुद नहीं है, हमने नहीं दौरा कुरान करना, उस सामने ही नहीं बैठी, हमने नहीं करना। बेकार बेतुक की बात है, बिल्कुल लायानी बात है। जिनको नहीं लेना वो बैठे भी हों तो नहीं लेते, शहर में मौजूद हों तो नहीं लेते, मुल्क में बैठे हों तो नहीं लेंगे। बात समझ रहे? मैं ये बता रही हूँ आपको कि तलब अंदर होनी चाहिए। तो अभी मैंने तो इतना एंजॉय किया, मुझे सादा कुरान दे, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ बगैर एक नंबर, बगैर एक टॉपिक, बगैर एक फ्लो चार्ट बोले देखे, मैं आपको जुबानी ये एक एक चीज़ दोहरवा सकती हूँ। अगर 5वीं दफ़ा इसको करना है तो मैं भी कराने को तैयार हूँ। 10 मिनट लगेंगे सिर्फ इस पूरे पारे को सम अप में करने में। यकीन करें, जब हमारा शुरू का कोर्स था ऑनलाइन पे, पहला कोर्स जिसको रिकॉर्डिंग में हमने लिया था, रब का पैगाम मेरे बंदों के नाम, कभी आपको अब इंशाल्लाह नई वेबसाइट आएगी, मैं ज़रूर रिक्वेस्ट उनसे करूँगी। उसके सिर्फ 14 पारे हुए थे, उसके बाद फिर हमने उसको दूसरे में ब्लेंड किया था। 4 घंटे की तफसीर होती थी रब का पैगाम मेरे नाम, इतनी डिटेल से होती थी के हदीसें आयतें और पता नहीं क्या कुछ था। और बाद में हर सूरत के पूरे होने पे मैं इस तरह बोल के जुबानी समरी कराती थी। मेरे लिए आधे से ज़्यादा कुरान की समरियाँ समरी वाइज और एक दूसरी क्लास में पारा वाइज समरी कराती थी। ये इतनी तहें लगती हैं तो कुरान याद होता है। वजह क्या है? कि ये मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आज मैं मेहनत नहीं कर रही तो कल मैं क्या करूंगी? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने अंदर तब्दीली आती रहेगी, बस ठीक है। तो हमेशा वो कॉम्पिटेंसी पैदा करें। परफेक्शन तो नहीं आ सकती हमें, बट हम अपनी कमियों को तो पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर सर डाल के इसी में खैर ढूंढें। जहाँ चीज़ घूमती है वहीं से मिलती है। हम थोड़ा सा वक्त कुरान पर लगा के इधर उधर दुनिया में खो जाएँ फिर नहीं मिलता। कभी खो जाएं, कभी आ जाएं, कभी चांद की तरह तलू हो जाएं, कभी कम हो जाएं, कभी ज्यादा हो जाएं, फिर बस कह लें कि अल्लाह हमारा गुजारा होता रहेगा, हमें हिदायत पे जोड़ते रहे। जितना ले रही हूं ना मैं आज, कल मैं उतना ही दूंगी, सीधी सी बात है। पूरी क्लास में बात टीचर के सामने एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिस पे उसकी नजरें होती, जिससे उसको उम्मीद होती कि ये चला गया ना आगे तो बस मेरे लिए तो फिर खैर खुशी हो जाएगी। वो सिर्फ उस एक को नजर में रख के पढ़ाता है। आप इमाम बुखारी को ही देख लें, एक इमाम बुखारी छुट्टी करते, मेरा ले उस्ताद उस दिन पढ़ाता ही ना। और वल्ला ही ऐसे लोग होते हैं क्लास में, आपको तो ये राज भी नहीं पता, वो ना ही दिल ही नहीं करता पढ़ाने को। ए, इनको क्या बताना है, जो मर्जी बता दो, इन्होंने कौन सा लिखना है, लिख भी लिया तो कौन सा सही लिखना है। ये उनके तो फैल पढ़ रहे हैं, तो दुआ करें अल्लाह हमें उनमें करें, इसके लिए फोकस। मैं एक ही लफ्ज सबको पट्टी पढ़ाती हूँ हर जगह, बी फोकस्ड, बी फोकस्ड, बी फोकस्ड। मिलनी खैर एक जगह से है, इधर मुंह मारूं उधर मारूं नहीं मिलेगी। तौहीद भी तो हमें फोकस होने सिखाती है ना। शादी हमें क्या सिखाती है, बी फोकस, जैसा भी है जो भी है तुमसे अच्छा है। बहरहाल अपने आप को हम नहीं देखे, अपने मियाँ पे तनकीद करते रहे तो फिर दूसरा भी ऐसे ही मिलना है, उसमें कोई और कमी होगी, इधर कोई और होगी। अपने बच्चों पे सब्र किया हुआ, ले सकते हैं दूसरे, दे दें अपने सारे बेकार बच्चे दूसरों को बांट दे जाएं क्राइसिस सेंटर वालों को, कि ले लो मेरे बच्चे, मुझे शहर के बेहतरीन जीनियस बच्चे दो, ग्रेड होल्डर और डिग्री होल्डर, और जाइए स्कूलों से ढूंढ के ला, मिल भी जाएंगे इधर तो आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे, कहीं उनके बेचारों के माँ बाप ही नहीं होने, नहीं लेते ना। तो इल्म पे सब्र करें। मैं अपने आप को लेके कहती हूँ ये बातें, समय मैं खुद को ही कह रही हूँ, आप खामखा सुन रहे हैं बीच में, कि अब जितनी जिंदगी रह गई है इसको इल्म पे लगा दो। आज के दौर का जिहाद यही है, आपके मेरे लिए तो कम से कम यही है। लेकिन अगर इधर उधर देखते हुए ये काम करना है ना, तो बस फिर दुआ करें कि चलें लगे रहें। उसमें खतरा तो सबसे बड़ा ये होता है कि बंदा खुद ही नहीं रहता कुछ अरसे बाद, लेकिन लगा रहे तो अल्लाह उसको फिर वापस ले आता है। कुरान की आयतें याद एक से एक आ रही है, कि अल्लाह कहता है वला तमुद्दन्ना ऐनैक इला मा ज़हरा। कुरान जिनको मिल गया, सूरह नहल की आयतें हैं, जिनको मैंने ये फातिहातुल किताब जिनको कुरान दे दिया, अब ला तमुद्दन अपनी आंखें ना लंबी करो उधर, जो दुनिया की ज़हरतुल हयात दुनिया, जो मैंने दुनिया की आधी कलियां लोगों को दी, ज़हरा कहते कली को, अनखिला फूल, कि ये दुनिया में हाय फुलां आगे निकल गया, हाय फुलां के ग्रेड है, फुलां इतना हो गया, तरक्की क्या तरक्की है। आप तरक्की इसको कहते हैं कि आप किसी काउंटर पर खड़े हो जाएं और हर महीने 10,000 करोन आपकी जेब में आ जाए, ये तरक्की है। अल्लाह अकबर। दुआ मांगे अपने लिए अच्छी सी, जहाँ असल में हमने अब सूरह बकरा का यानी पहले पारे का हिस्सा पूरा किया, जहाँ पे दूसरा हिस्सा पूरा होता है अभी, दो हिस्से पीछे हैं।